घर में अब अयान और जोया की तलाक की बात खुलकर होने लगी थी। नावेद साहब और उनकी बेगम इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अब इस रिश्ते को और घसीटने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने जोया के लिए एक नया रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था। आखिरकार वो उनकी जिम्मेदारी थी। सच तो ये भी था कि अयान ने ये शादी कभी पूरी तरह अपनाई ही नहीं थी। जोया से शादी कराने का मकसद यही था कि वो लड़की हमेशा उनके घर में रहे, परिवार का हिस्सा बनकर। लेकिन वो उम्मीद कभी पूरी नहीं हो सकी। नावेद साहब ने एक दिन अयान को अपने कमरे में बुलाया। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर शब्दों को संभाल कर बोलना उनके लिए भी आसान नहीं था। देखो अयान, जैसा तुम चाहते थे अब वही हो रहा है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब तुम्हें जिंदगी को लेकर थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए। अपने काम पर ध्यान दो, ऐसे लापरवाह होकर जिंदगी नहीं चलती। मैं ऑफिस जा रहा हूं और क्या करूं, अयान ने बेहद बेरुखी से जवाब दिया। और आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे? जब देखो तब कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, मेरी जिंदगी को आपने अजूबा बनाकर रख दिया है। उसका लहजा और बर्ताव देखकर नावेद साहब का दिल टूट रहा था। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि उनका बेटा अब पूरी तरह बदल चुका है। एक बात याद रखना अयान, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं होगे, तो मेरे रुतबे, मेरे नाम और हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अयान चुप रहा, फिर अचानक एक लंबे समय से दबा हुआ जहर बाहर निकल आया। तो ऐसा कीजिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, उसने ठंडे स्वर में कहा। आपको भी तो मुझसे छुटकारा चाहिए ना, यही तो बहाना ढूंढते रहते हैं। सीधे सीधे कहिए, आप मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते। नावेद साहब कुछ बोल नहीं पाए। अयान की आंखों में जैसे एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी, एक ऐसी आज़ादी की तलाश जो रिश्तों और जिम्मेदारियों से परे हो। उसके आसपास कुछ लोग थे जो पहले से ही उसे भड़काते रहते थे, कहते थे कि अकेले रहो, इतनी बड़ी फैमिली का झंझट न रहेगा तो सुकून मिलेगा। अयान अब उसी राह पर चल पड़ा था। नावेद साहब को अब जरा भी शक नहीं रहा था, उनका बेटा अब उनके हाथ से पूरी तरह फिसल चुका था। नावेद साहब की आंखों में अब केवल गुस्सा नहीं था, एक ठहराव था जो तब आता है जब कोई पिता जान जाता है कि अब वो बेटे को और नहीं संभाल सकता। वो भारी आवाज में बोले, अलग रहना है, रहो, कौन रोक रहा है तुम्हें? पर कैसा हिस्सा, कौन सा हिस्सा? वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, उनका चेहरा लाल हो चुका था और माथे की नसें तन चुकी थीं। ये घर, ये बिजनेस, ये जमीन, ये सब मेरे पिता की मेहनत से खड़ा हुआ है, और फिर मेरी रात दिन की मेहनत से। तुमने क्या किया है इसके लिए? सिर्फ मुंह खोलना सीखा है, दोस्तों के साथ घूमना, बर्बाद करना, यही किया है। अब अगर इतनी ही आजादी चाहिए तो निकल जाओ, मेरा दरवाजा हमेशा से खुला था, आज से बंद समझो। अयान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने नजरें नहीं झुकाई बल्कि और तीखी कर ली। जानता हूं आपको मैं कभी पसंद नहीं आया, और अब तो आप साफ साफ कह भी रहे हैं कि मैं इस घर के लायक नहीं रहा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, उसने जोर से कहा। असल वजह यह है ना, आपको तो मुझसे कभी कोई लगाव था ही नहीं। नावेद साहब ने पास पड़ी वॉकिंग स्टिक जोर से जमीन पर मारी। बस अब एक शब्द और मत बोलो। अयान की आंखों में आग थी, वो गुस्से से कांप रहा था। मगर याद रखना, आप भी एक दिन पछताओगे। मेरी जिंदगी मेरी है और मैं किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से जीऊंगा। वो गुस्से से कमरे का दरवाजा धक्का मारकर बाहर निकला। उसी पर लिविंग रूम का दरवाजा खुला, जोया घर के अंदर आ रही थी। अयान की नजर जैसे ही जोया पर पड़ी, उसके कदम थम गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्से की आग चमक उठी। तुम ही हो इस सब बर्बादी की जड़, वो चीखा। जोया स्तब्ध खड़ी रह गई, कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। याद रखना, मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगा, उन्होंने तुम्हारी वजह से आज मुझे इस घर से निकलने को कह दिया। अब देखना मैं इस रिश्ते को कैसे खत्म करता हूं। उसकी आंखें जलती आग की तरह लाल थीं। वो गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि सच झूठ सही गलत का फर्क तक मिट गया था। जोया अब भी चुप थी। अयान भारी कदमों से मुट्ठियां भींचते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई तूफान अपने अंदर समेटे हुए हो जो अब सब कुछ तबाह करने ही वाला है। मगर ये बर्बादी किसी और की नहीं, अयान खुद की करने जा रहा था। वो गुस्से से कांपता हुआ घर से बाहर निकला, बिना एक बार पीछे देखे। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि दीवारों तक में गूंज फैल गई। गली में आते ही उसने जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, कहाँ हो, उसने तेज स्वर में पूछा। दूसरी तरफ से दोस्त की आवाज आई। क्या हुआ यार, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया क्या? उसकी आवाज में मजाक था मगर मतलब गंभीर था। हाँ, निकाल दिया, अयान ने गुस्से से जवाब दिया। तो फिर आ जाओ यार, हम सब यहीं बैठे हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, और हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपना हिस्सा कैसे मिल सकता है, लीगल तरीका है एकदम। वो दोस्त जानता था कि अगर अयान के हाथ पैसा आ गया तो सबसे पहले वो उसे ही फायदा पहुंचाएगा, जैसा हमेशा होता आया था, और यही लालच उसकी दोस्ती की बुनियाद भी बन गया था। एक पब के कोने की टेबल पर अयान अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कुछ और लड़के थे और दो लड़कियां भी। माहौल शोरगुल से भरा था, लेकिन अयान की आंखों में सिर्फ गुस्सा और शराब के नशे की धुन थी। अब क्या करना है, एक लड़के ने पूछा। कोर्ट में चलते हैं, देख लेना कैसे सबको घसीटते हैं हम, दूसरे ने अयान को भड़काते हुए कहा। तुम्हारा हक है और कोई तुमसे नहीं छीन सकता। अयान की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उसने ग्लास एक ही बार में खाली किया और टेबल पर जोर से रखा। मैं अभी जा रहा हूं वकील से बात करने, सबक सिखाऊंगा सबको, वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। नशा इस कदर हावी था कि जमीन भी हिलती सी महसूस हो रही थी। सुन, मैं तेरे साथ चलता हूं, एक दोस्त ने कहा, लेकिन अयान ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, मुझे अकेले जाना है, कोई बीच में ना आए। वो बाहर निकला, कार की चाबी निकाली और दरवाजा खोलते ही अंदर बैठ गया। गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन अयान को ना दिशा का होश था ना रफ्तार का, नशे में बड़बड़ाता जा रहा था। मुझे घर से निकाल दिया, मैं सबको देख लूंगा, देख लेना, कोर्ट में खींचूंगा सबको। जोया, अब तुम नहीं बचोगी, कोई नहीं बचेगा। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की आग थी और गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। उसका हाथ स्टेयरिंग पर ढीला पड़ता जा रहा था, मगर पैर एक्सेलरेटर पर और जोर डाल रहा था। अचानक सामने से तेज लाइट आई, ट्रक। अयान की आंखें झपकी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भड़ाम, एक जोरदार टक्कर हुई। उसकी गाड़ी ट्रक के साइड से टकरा गई थी। ट्रक के पीछे लदा लोहे की नुकीली रॉड वाला सामान सीधा आकर अयान की कार के शीशे को चीरता हुआ घुसा और एक लंबी तेज रॉड उसके दिल को पूरी तरह भेद चुकी थी। चारों तरफ खून, गाड़ी का हॉर्न लगातार बज रहा था। रास्ते पर लोगों की भीड़ लगने लगी थी। एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया, और अयान, वो होश खो रहा था, मगर गुस्से की आग उसके चेहरे से अब भी बुझी नहीं थी। किसी ने अयान के एक्सीडेंट की खबर उसके घर वालों तक पहुंचा दी थी। सब कुछ जैसे एक झटके में बदल गया। नावेद साहब, उनकी बेगम और अयान के बड़े भाई, सभी लोग भागते हुए अस्पताल पहुंच चुके थे। जब उन्होंने अयान की हालत देखी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बेहद बुरी हालत में था, शरीर से खून बह रहा था, उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था और डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि उसकी जान बचाई जा सके। हालत इतनी नाजुक थी कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। कहीं कोई उम्मीद थी, कहीं डर।
क्या अयान बचेगा? ये सवाल सबकी आंखों में था, मगर जवाब सिर्फ एक ही जानता था, अल्लाह। अल्लाह जिसे बचाना चाहता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसका वक्त पूरा हो चुका होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। कौन जानता था कि अब अयान का क्या होना है? क्या ये हादसा उसकी जिंदगी बदल देगा, या फिर यही उसकी आखिरी मंजिल थी? अपने निष्कर्ष दें प्लीज। मेरी सीरीज पर अपना कमेंट जरूर करें और साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे फॉलो करना और व्यू देना ना भूलें। आपके एक एक शब्द मुझे आगे लिखने की ताकत देते हैं। क्या मेरी सीरीज सही ट्रैक पर जा रही है? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए।